यहोशु अध्याय एक। आज हमारा अध्ययन यहोशु की पुस्तक के साथ आगे बढ़ रहा है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशु से, जो नून का पुत्र था, कहा। यहोशु एक का एक। हम दास शब्द का अर्थ गलत ना समझें। आज लोग सेवक के अर्थ को ही बिगाड़ देते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो सेवकाई को सेवा न समझकर मनुष्यों से अपनी सेवा करवाने को एक अधिकार समझते हैं। वे कहते हैं, आपको मेरे पास ये लाना चाहिए या वो लाना चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं, अर्थात मैं आराम से बैठा रहूं और आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा करें तथा मेरे आदेशों का पालन करें। ये एक बहुत ही गलत धारण है। परमेश्वर का दास होने का अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ है सेवा करने वाला। यीशु ने कहा, जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। मरकुस 10:44। अतः एक सच्चा सेवक वो है जो अपनी सेवा न करवाते हुए दूसरों की आवश्यकता में सेवा करे। अतः यहां हम देखते हैं कि यहोशु मूसा का सेवक या टहलुआ था। वो मूसा के साथ रहता था, वो मूसा के कामों में उसकी मदद करता था। मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशु को मूसा की निजी सेवा से उठाकर संपूर्ण इसराइल का सेवक बना दिया। वो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य था, अतः परमेश्वर ने उसे बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दे दी। परमेश्वर का यही तरीका है। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था जिसका सार ये था, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मत्ती 25:21। उसने कहा कि यदि मैंने तुझे छोटी छोटी बातें सौंपी और तू विश्वास योग्य नहीं रहा, तो मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तुझ पर कैसा विश्वास करूं। जब परमेश्वर हमें अपनी सेवा में विश्वास योग्य होने के लिए प्रोत्साहन देता है, तब वो हमें सेवा के किसी भी क्षेत्र में ले जाए, हम विचलित नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कलीसिया में कुछ सेवकाइयों को नीचा देखते हैं। ये मानवीय स्वभाव है कि सेवकाई के कुछ पहलुओं को अधिक महत्वपूर्ण और आदर का माना जाए। कुछ ऐसी सेवकाई है जो लोगों को ललचाती है, जिनके लिए लोग परस्पर जलन रखते हैं, क्योंकि उसमें सेवक ध्यान का केंद्र होता है और उसे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि एक सेवा दूसरी सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ सेवकाइयां ऐसी है जिसमें मनुष्य ध्यान का केंद्र नहीं होता है, परंतु परमेश्वर ने उन सेवकाइयों को अत्यधिक महत्व दिया हुआ है। ऐसी ही एक सेवा है मध्यस्थता की प्रार्थना। किसी को भी पता नहीं होता है कि ये सेवा कौन कर रहा है, तथापि ये कलीसिया की एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। परमेश्वर इस सेवा को कैसे महान आदर प्रदान करता है। वो व्यक्ति जिसके पास इस सेवा का बोझ है और वो इसमें विश्वास योग्य है, तो वो कैसा महान प्रतिफल पाएगा। मैं ये नहीं जानता कि स्वर्ग में अलग अलग सेवकाइयों की पंक्तियां होगी। मैं आशा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो मुझे अंतिम पंक्ति में बैठाया जाएगा, क्योंकि मेरी सेवकाई की पूरी खबर लगातार वहां पहुंचती रहती है। यहां मैं आपके प्रेम और लगाव और सहानुभूति के रूप में अपना प्रतिफल पा रहा हूं, और जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहां मेरे लिए कोई प्रतिफल बचा ही नहीं होगा। मुझे तो अंतिम पंक्ति में खड़ा होकर झांकना पड़ेगा कि सामने देख पाऊं और आप लोग, जिन्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं सराहता, जो कभी मंच पर नहीं चढ़े, आप लोग सामने की पंक्तियों में खड़े होंगे, क्योंकि आप लोग परमेश्वर द्वारा दी गई सेवा में छिपे रहकर भी विश्वास योग्य रहें। आप आकर्षण का केंद्र तो नहीं बने, परंतु विश्वास योग्य अवश्य रहे। हमें पूरे समय की सेवकाई के विचार को त्याग देना है। आप कहीं भी नौकरी करें, आप परमेश्वर के लिए पूरे समय के सेवक हैं। आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए करते हैं, और आपकी सेवा का उद्देश्य यह है कि आप प्रभु के लिए सेवा करते हैं, क्योंकि आप प्रभु से प्रतिफल की आशा रखते हैं। अतः सेवकाई के विषय में हमारी समझ उचित होना चाहिए, और विशेष करके उनकी जो कलीसिया के पद अधिकारी है। हम ये विचार त्याग दे कि पास्टर का पद एक पवित्र जन है और दूसरों से बड़ा है, क्योंकि पास्टर एक सेवक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पास्टर कितने लोगों का टहलुआ होता है? परमेश्वर ने उसे इस काम के लिए बुलाया है। इस प्रकार आप समझ पाएंगे कि यहोशू मूसा का टहलुआ था, अर्थात उसका सेवक था। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू से बात की। उसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। उसकी माता ने उसे होशे नाम दिया था। यहोशू नाम उसे मूसा ने दिया था। होशे का अर्थ है उद्धार। परंतु जब मूसा ने उसके गुणों को देखा, तब उसका नाम यहोशू या येशुआ रखा, अर्थात यहोवा का उद्धार। यहोशू एक इब्रानी शब्द है, और इसे यूनानी में येशु कहते हैं। इस प्रकार हम यहोशू में येशु को देखते हैं। उसने अपने लोगों को विश्राम में प्रवेश कराया था, अर्थात उन्हें प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार दिलाया था। मूसा इसराइल को मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा के देश की सीमा तक ही लाया, परंतु वो उन्हें लेकर उस देश में प्रवेश नहीं कर पाया। मूसा व्यवस्था का प्रतीक है, और व्यवस्था आपको परमेश्वर की आशीषों की परिपूर्णता में प्रवेश नहीं करा पाती है। व्यवस्था आपको केवल सीमा तक लाकर ही छोड़ देती है, वो आपको परिपूर्णता में प्रवेश नहीं दिला पाती है। अतः मूसा के लिए ये आवश्यक था कि यहां तक आकर वो अपनी अगुवाई के पद को त्याग दे। मूसा के बाद यहोशू अगुवाई का उत्तरदायित्व संभालता है कि वो इसराइल को परमेश्वर की प्रतिज्ञा में प्रवेश कराए। हमें कीमती और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई है। परमेश्वर ने आपके लिए एक ऐसा जीवन रखा है जो मसीह में महान समृद्धि का जीवन है। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप आत्मिक अनुभव की चक्री पर घूमते रहें। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप उस भरपूर जीवन में प्रवेश करें जो उसके पास आपके लिए मसीह यीशु में रखा है, और आप मसीह में उस विजयी जीवन का आनंद लें। व्यवस्था आपको उस जीवन में प्रवेश नहीं करा सकती है, केवल मसीह यीशु ही आपको उसमें ले चल सकता है। इस प्रकार जहां मूसा ने छोड़ा, वहां से आगे यहोशू ने संभाला। व्यवस्था उन्हें जहां तक ले जा सकी ले गई। अब नया संबंध विश्वास पर आधारित होगा। अब उन्हें विश्वास में कदम रखना होगा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना होगा। उनकी कनान विजय मसीही विश्वासियों के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त विजयी जीवन में प्रवेश की प्रतीक है। देह के जिन दैत्यों ने हमें दास बना रखा था, उन पर विजय पाकर हम मसीह में और मसीह के द्वारा उस महान विजय के भागी होते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। यहां रोचक बात यह है कि यहोशू ने उन्हें केवल उस देश में विजय यात्रा की अगुवाई प्रदान की। वो उन्हें अनंत विश्राम में नहीं ला पाया था। ये काम यीशु के लिए छोड़ दिया गया था कि वो हमें महिमा से पूर्ण उस अनंत विश्राम में लेकर आए। ये कार्य मसीह यीशु के लिए छोड़ दिया गया था। इब्रानियों की पुस्तक में ये अंतर दर्शाया गया है। लेखक कहता है कि यहोशू इसराइल के वंशजों को प्रतिज्ञा के देश में तो लाया, परंतु उन्हें विश्राम में प्रवेश न दिला पाया, क्योंकि ये काम यीशु मसीह के लिए था। एक बार जब मसीह यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा मुक्ति के कार्य को पूरा कर दिया, तो हमारा विश्राम में प्रवेश हो गया। उसमें हमारा अनंत जीवन है। हमारे पास प्रभु में ये अवधित विश्राम है। इस प्रकार यीशु ने हमारे लिए वो कार्य किया जो यहोशू नहीं कर पाया था। यीशु ने हमें महिमामय विश्राम में प्रवेश करा दिया है। बाइबल में दी गई ये उपमाएं बड़ी आकर्षक है। यहां परमेश्वर यहोशू से बातें करता है और उसका वचन प्रोत्साहन से पूर्ण है। वो यहोशू से कहता है कि अब वो बागडोर संभालें और इसराइल के वंशजों की अगुवाई करें। पद 3 में परमेश्वर की बड़ी ही मनोहर प्रतिज्ञा है, जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। यहोशू 1:3 पद। मूल भाषा में मैं तुम्हें दे चुका हूं। मुझे ये पद पसंद है क्योंकि इसका अर्थ ये है कि उन्हें विश्वास में कदम रखना है और जहां वे कदम रख देंगे वहां उनकी विजय निश्चित है। इसका आत्मिक अर्थ यह है कि हम भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुसार दैहिक अभिलाषाओं पर विजय का कदम उठा लें और विजय पाएं। परमेश्वर ने आपको महिमा से पूर्ण भरपूरी का जीवन दिया हुआ है। आपको जो करना है वो ये है कि विश्वास से प्रवेश करो और अधिकार करो। तुम जहां भी पाँव रखोगे वहां मैं तुम्हें दे चुका हूं। आपको केवल जाकर और परमेश्वर की आशीषों को अपनाना है, उसकी प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करना है। अतः हम सतर्क रहें, अन्यथा हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से वंचित हो जाएंगे और उनमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण है कि हम देह पर विजय पाएं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो हमें विजय दिलाएगा। उस हरेक स्थान पर जहां तुम्हारा पांव पड़ेगा मैं तुम्हें दे चुका हूं। जंगल और उस लबनोन से लेकर परात महानद तक। यहोशू 1:4 पद। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जहां जहां तुम अपने पांव रखोगे वो स्थान मैं तुम्हें दे चुका हूं, परंतु दुर्भाग्य से वे वहीं पर रुक गए। वे परात महानद तक नहीं गए। उन्होंने उस पूरे स्थान अर्थात परात महानद तक अधिकार नहीं किया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी थी। हमारे साथ भी यही त्रासदी है कि हम परमेश्वर की उन समस्त आशीषों को नहीं लेते जो परमेश्वर ने हमें दी हुई है। हम परमेश्वर यीशु में उस विजयी जीवन की परिपूर्णता में प्रवेश नहीं करते हैं। हम हिचकिचाते हैं या फिर इसराइलियों के समान थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। बस हमें इतना ही चाहिए। हम अपनी आत्मिक उन्नति में एक स्थान पर आकर आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। हम एक स्तर पर आकर कहते हैं, या की स्तुति करो, ये तो बड़ा ही अच्छा है, और हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें वो पूरा क्षेत्र दे दिया कि वो उनका है, तो उन्होंने उसे अपने अधिकार में नहीं लिया। परमेश्वर उन्हें वो पूरा स्थान दे चुका था। यही कारण है कि धर्मशास्त्र हमें लगातार चेतावनी देता है कि हम आगे बढ़ें। हमें परिपूर्णता में, भरपूरी में बढ़ते जाना है। परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। यदि आप केवल विश्वास रखकर आगे बढ़ें और उसका दावा करें और उस पर अधिकार करें, तो वो सब आपका है। अब परमेश्वर उसे प्रोत्साहित करता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। यहोशू 1:5-7 पद। परमेश्वर यहोशू को अपनी उपस्थिति और अपने संरक्षण की प्रतिज्ञा देकर प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर उसे उन शर्तों को भी बताता है जिनके अधीन वो उसे अपनी संगति और अपना सारांश प्रदान करेगा, और उससे ना तो दहने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू 1:7-8 पद। परमेश्वर निर्देश देता है, व्यवस्था का पालन कर, उसे अलग न होना, क्योंकि उस पर दिन रात मनन करने तथा पालन करने के द्वारा तू अपना जीवन समृद्ध बनाएगा और तेरा काम सफल होगा। भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। भजन संहिता 1:1-3 पद। जो लोग समृद्धि को खोजते हैं, जो सफलता को खोजते हैं, उन्हें परमेश्वर ने नियम दिए हैं। वे उन नियमों का मनन करें, उनका पालन करें, और इस प्रकार उनके काम सफल होंगे। यही समृद्धि के नियम है, यही सफलता के नियम है। इस प्रकार ये वे शर्तें हैं जिनके ऊपर प्रभु का संरक्षण, प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की विजय को अनुभव किया जा सकता है। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को ये आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, तुमने मूसा से प्रतिज्ञा की थी कि तुम हमारे साथ प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करोगे और हमारी सहायता करोगे। उसने उनसे कहा कि वे अपने पत्नी और बच्चों को वहां छोड़ दें और अपने लड़ाकुओं को लेकर उनके साथ हो लें, जिससे कि वे यर्दन पार करके उस पर अधिकार करें जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहे जो मूसा ने तुम्हें यर्दन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, पंक्ति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो, और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसे वो तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में, जो यहोवा के दास मूसा ने यर्दन के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है, लौटकर इसके अधिकारी होंगे। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था, वैसे ही तेरे संग भी रहे। यहोशू 1:10-17।